नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जिमी सोनी की द फाउंडर्स, पेपाल की उत्पत्ति, उसके संघर्षपूर्ण विकास और उससे निकले प्रभावशाली उद्यमी नेटवर्क का गहन गैरकथात्मक इतिहास है। यह केवल किसी भुगतान सेवा की सफलता कथा नहीं, बल्कि .com उछाल और उसके पतन के बीच उत्पाद, नेतृत्व, पूंजी और भरोसे की समस्याओं से जूझती एक कंपनी का सामूहिक जीवन चित्र है। पुस्तक कॉन्फिनिटी और X.com की प्रतिद्वंद्विता, उनके विलय, ऑनलाइन धोखाधड़ी के दबाव और ईबे द्वारा अधिग्रहण तक की यात्रा को अनेक कर्मचारियों तथा संस्थापकों के दृष्टिकोण से देखती है। इसके केंद्रीय पात्रों में पीटर थील, मैक्स लेविचिन, एलन मस्क और रीड हॉफमैन जैसे नाम हैं, लेकिन सोनी का जोर किसी एक नायक पर नहीं है। उनका उद्देश्य यह समझाना है कि असाधारण प्रतिभा, तीव्र मतभेद, जोखिमपूर्ण प्रयोग और मजबूत निजी संबंध किस तरह एक कंपनी और फिर पूरे सिलिकॉन वैली पर असर डालने वाले नेटवर्क को जन्म देते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले कॉन्फिनिटी और X.com का विलय, प्रतिस्पर्धा से संगठन निर्माण तक। पुस्तक का प्रमुख ढांचा कॉन्फिनिटी और एलन मस्क की X.com के बीच संघर्ष और अंततः विलय है। दोनों का लक्ष्य इंटरनेट पर धन के लेन देन को सरल बनाना था, पर उनकी रणनीतियां, तकनीकी प्राथमिकताएं और नेतृत्व शैलियां अलग थीं। कॉन्फिनिटी के साथ मैक्स लेविचिन की सुरक्षा केंद्रित तकनीकी सोच और पीटर थील की व्यावसायिक दृष्टि जुड़ी थी, जबकि X.com व्यापक ऑनलाइन वित्तीय सेवा बनने की महत्वाकांक्षा रखती थी। सोनी इस टकराव को अपरिहार्य साझेदारी के रूप में नहीं पेश करते। वे दिखाते हैं कि बाजार में समान ग्राहक पाने की लागत, तेज वृद्धि की जरूरत और प्रतिस्पर्धी दबाव ने विलय को व्यावहारिक विकल्प बनाया। विलय के बाद भी समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि नई कंपनी को नाम, उत्पाद की दिशा और नियंत्रण के प्रश्नों पर निर्णय लेने पड़े। इसी दौर में पेपाल नाम और ईमेल आधारित भुगतान का महत्व उभरा। इस प्रसंग का उपयोग पुस्तक एक महत्वपूर्ण उद्यमशील सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए करती है। स्टार्टअप में विलय केवल वित्तीय सौदा नहीं होता, वह उत्पाद, संस्कृति और अधिकार के संघर्षों को एक ही संस्था के भीतर ले आता है। इसलिए बाजार में जीतने की क्षमता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विरोधी टीमों के लोग एक साझा प्राथमिकता के पीछे कितनी जल्दी संगठित हो पाते हैं। दूसरा, ऑनलाइन धोखाधड़ी ने पेपाल के उत्पाद और संचालन को कैसे बदला। द फाउंडर्स पेपाल की कहानी को केवल नवाचार की कहानी मानने से रोकती है, क्योंकि कंपनी की वृद्धि के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी भी तेज हुई। इंटरनेट भुगतान में उपयोगकर्ता को सुविधा चाहिए, लेकिन भुगतान मंच को यह भी तय करना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तविक है या नहीं, लेन देन वैध है या नहीं, और नुकसान का भार कौन उठाएगा। पेपाल के शुरुआती वर्षों में यही तनाव अत्यंत गंभीर था। तेज ग्राहक वृद्धि के लिए साइन अप और भुगतान आसान रखने पड़ते थे, जबकि अपराध रोकने के लिए जांच और नियंत्रण आवश्यक थे। पुस्तक बताती है कि इस स्थिति ने इंजीनियरिंग, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक सहायता को अलग अलग विभागों के बजाय एक ही व्यावसायिक समस्या के हिस्से बना दिया। मैक्स लेविचिन और उनकी टीम के काम के संदर्भ में यह भी स्पष्ट होता है कि सुरक्षा कोई अंतिम चरण में जोड़ी जाने वाली विशेषता नहीं है, वह भुगतान उत्पाद की विश्वसनीयता और अर्थशास्त्र दोनों को तय करती है। धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कंपनी की पूंजी को खा सकता था, और अत्यधिक कठोर नियंत्रण असली ग्राहकों को दूर कर सकता था। पेपाल का अनुभव इसलिए फिनटेक के लिए प्रासंगिक है। भरोसा आकर्षक प्रचार से नहीं बनता, बल्कि उपयोग में सरलता और जोखिम नियंत्रण के कठिन संतुलन से बनता है। तीसरा, नेतृत्व संघर्षों में उत्पाद की दिशा और सत्ता का संबंध। सोनी के वर्णन में पेपाल का नेतृत्व किसी स्थिर संस्थापक मंडली की तरह नहीं दिखता। कंपनी के भीतर रणनीति, तकनीक और प्रबंधन को लेकर तीखे मतभेद थे। एलन मस्क, पीटर थील और मैक्स लेविचिन जैसे नेताओं की अलग प्राथमिकताएं थीं, और ये मतभेद कंपनी के उत्पाद संबंधी निर्णयों से सीधे जुड़े थे। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन बैंक बनने की व्यापक आकांक्षा और ईमेल द्वारा भुगतान जैसे अधिक केंद्रित उपयोग मामले के बीच चुनाव केवल ब्रांडिंग का प्रश्न नहीं था, उससे तकनीकी संसाधन, ग्राहक व्यवहार, जोखिम और बाजार में गति सभी प्रभावित होते थे। पुस्तक नेतृत्व परिवर्तन को व्यक्तिगत नाटकीयता तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे उस परिस्थिति का परिणाम बताती है जिसमें निवेशक, कर्मचारी और संस्थापक कंपनी को बचाने तथा बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय देखते हैं। इससे एक असुविधाजनक पर उपयोगी निष्कर्ष निकलता है। संस्थापक होना अपने आप में स्थायी निर्णय अधिकार की गारंटी नहीं है, विशेषकर जब कंपनी तेजी से बढ़ रही हो और गलत निर्णय की कीमत बहुत बड़ी हो। साथ ही पुस्तक किसी एक नेतृत्व शैली को सरलता से सही घोषित नहीं करती। पेपाल की प्रगति में महत्वाकांक्षी दृष्टि, कठोर संचालन, तकनीकी क्षमता और सत्ता संघर्ष सभी की भूमिका थी। पाठक देख सकता है कि स्टार्टअप शासन में असहमति कभी विनाशकारी होती है, पर कभी वह उत्पाद की प्राथमिकताओं को अधिक स्पष्ट भी करती है। चौथा, डॉटकॉम पतन और ईबे अधिग्रहण के बीच टिकाऊ व्यवसाय की परीक्षा। पेपाल का निर्माण उस समय हुआ जब इंटरनेट कंपनियों के मूल्यांकन तेज थे, लेकिन उनका व्यावसायिक आधार अक्सर अनिश्चित था। द फाउंडर्स इस ऐतिहासिक संदर्भ को महत्वपूर्ण मानती है क्योंकि डॉटकॉम पतन ने पूंजी मनोबल और बाजार की अपेक्षाओं को बदल दिया। ऐसी स्थिति में कंपनी के लिए केवल उपयोगकर्ता संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं था, उसे यह सिद्ध करना था कि उसका भुगतान उत्पाद वास्तविक लेन देन की समस्या हल करता है और उससे आय का टिकाऊ रास्ता बन सकता है। ईबे के विक्रेताओं और खरीदारों के बीच पेपाल का उपयोग बढ़ना इस बदलाव में निर्णायक था। नीलामी बाजार में तेज और अपेक्षाकृत आसान भुगतान की जरूरत ने सेवा को ऐसा उपयोग क्षेत्र दिया जहां नेटवर्क प्रभाव दिखाई देने लगा। जितने अधिक खरीदार और विक्रेता पेपाल अपनाते, उतना ही दूसरों के लिए उसे अपनाना सुविधाजनक बनता। फिर भी यह लाभ धोखाधड़ी, ग्राहक शिकायतों और प्रतिस्पर्धा से अलग नहीं था। पुस्तक ईबे द्वारा पेपाल के अधिग्रहण को केवल सफल निकास के रूप में नहीं देखती, यह उस बिंदु का संकेत है जहां एक अनिश्चित स्टार्टअप ने बड़े इंटरनेट बाजार की संरचना में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। पाठक के लिए सबक यह है कि कठिन आर्थिक दौर अक्सर उत्पाद की वास्तविक मांग और केवल प्रचार से बनी मांग के बीच अंतर स्पष्ट कर देते हैं। अंत में पेपाल माफिया, सामाजिक पूंजी और सिलिकॉन वैली में केंद्रित प्रभाव पुस्तक का सबसे व्यापक विषय पेपाल के बाद का प्रभाव है, जिसे सामान्यतः पेपाल माफिया कहा जाता है। यह शब्द उन पूर्व संस्थापकों और कर्मचारियों के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने आगे चलकर टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प, पलेंटर और अनेक निवेश तथा उद्यमों से संबंध बनाया। सोनी के लिए इस नेटवर्क की शक्ति केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों की सूची में नहीं है, उसका आधार पहले से बने विश्वास, एक दूसरे की क्षमता का प्रत्यक्ष ज्ञान और जोखिम लेने के समय सहायता देने की तत्परता में था। शुरुआती सहकर्मी बाद में निवेशक, सलाहकार, सहसंस्थापक या नियुक्तिकर्ता बन सके। इस तरह एक कंपनी में निर्मित संबंधों ने नई कंपनियों के लिए पूंजी, प्रतिभा और विश्वसनीयता तक पहुंच आसान की। लेकिन पुस्तक और उसके आलोचनात्मक पाठ दोनों इस मॉडल का दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं। घने पेशेवर नेटवर्क अवसर तेज कर सकते हैं, पर वे बाहरी लोगों के लिए पहुंच कठिन भी बना सकते हैं। जब धन, निर्णयाधिकार और नियुक्तियां बार बार सीमित परिचित समूहों के भीतर घूमें, तो नवाचार के साथ असमानता और वैचारिक प्रभाव भी केंद्रित हो सकते हैं। इसलिए द फाउंडर्स पेपाल माफिया को न तो निर्विवाद आदर्श बनाती है, न केवल दोष का प्रतीक, वह इसे सामाजिक पूंजी की असाधारण उत्पादकता और उसकी संभावित बहिष्कारी प्रवृत्ति दोनों को समझने का मामला बनाती है। निष्कर्ष में, द फाउंडर्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो स्टार्टअप इतिहास, वित्तीय प्रौद्योगिकी, सिलिकॉन वैली और आधुनिक तकनीकी नेतृत्व के स्रोतों को समझना चाहते हैं। उद्यमियों को इसमें उत्पाद और बाजार के मेल, तीव्र प्रतिस्पर्धा, धोखाधड़ी नियंत्रण तथा नेतृत्व परिवर्तन की वास्तविक लागत पर ठोस दृष्टि मिलती है। निवेश नीति या संगठन अध्ययन के पाठकों के लिए इसका बड़ा लाभ यह है कि यह दिखाती है कि कंपनी की सफलता केवल विचार या धन से नहीं बनती। तकनीकी संरचना, उपयोगकर्ता भरोसा, काम करने की संस्कृति और पेशेवर संबंध मिलकर परिणाम बनाते हैं। फिर भी पुस्तक को कोई सीधी प्रबंधन मार्गदर्शिका मानना उचित नहीं होगा। इसका मूल्य तैयार नुस्खों में नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों की जटिलता में है जिनमें निर्णय लिए गए थे। समान उद्यमिता पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान इसका सामूहिक जीवनी वाला ढांचा है, जहां अनेक किताबें किसी एक करिश्माई संस्थापक को केंद्र में रखती हैं। सोनी पेपाल को परस्पर निर्भर और अक्सर टकराते लोगों की संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विस्तृत रिपोर्टिंग और अनेक प्रतिभागियों की आवाजों के कारण पाठक को यह समझने में मदद मिलती है कि बड़े तकनीकी परिणाम अक्सर एक व्यक्ति की योजना से नहीं, बल्कि संघर्ष, संयोग, सहयोग और संस्थागत दबावों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। पेपाल के बाद फैले नेटवर्क पर इसका ध्यान पुस्तक को अतीत के कंपनी इतिहास से आगे ले जाकर वर्तमान तकनीकी शक्ति और उसके सामाजिक परिणामों की पड़ताल भी बनाता। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिमी सोनी, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।